आयत का थोड़ा सा पहले शाने नजूल आप सुन ले। नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आए और एक एक ने पूछा, क्या हमारा रब करीब है? करीब है तो हम आहिस्ता आहिस्ता उससे बात कर लें, या वो दूर है हमसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उस पे ये आयत। दूसरी एक और रिवायत में आता है कि सहाबा के इस सवाल के ऊपर कि हमारा रब कहाँ है, तब ये आयत उतरी। एक और रिवायत आती है, जब आयत उतरी उदउनी यस्तजिब लकुम, ये नाजिल हुई यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ, तो लोगों ने पूछा दुआ किस वक्त करनी चाहिए, उस पर ये आयत उतरी। तो इस पे ये जवाब आया, वा इजा सअलक इबादी अन्नी, जब सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में। जब अल्लाह ताला किसी को कह दे ना मेरा बंदा है, तो ये बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को बंदा अब्द कह के पुकारा है कुरान पाक, और अब्दियत का मकाम बहुत ऊंचा है। यानी किसी जगह पे भी गुलामी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे गुलामी सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह के गुलाम बनने में इज्जत। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मेरे बंदे, और फिर फरमाते हैं मेरे हैं ये बंदे, मेरे बारे में सवाल कर, अगर यहाँ पे नहीं कहा गया कि अगर मेरे बारे में पूछे तो उनको बता देना, जब पूछे, अगर में होता है ना चांस कि अगर पूछा तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तो नहीं, जब में क्या होता है कि जरूर पूछेंगे। अल्लाह ताला उस बंदे से डायरेक्ट बात करें, फइन्नी करीब, तो बेशक मैं करीब हूँ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हटा दिया, जब में मेरे बंदे मेरे बारे में पूछेंगे ना, यानी इनको मेरे से इतनी मोहब्बत है कि वो मेरे बारे में जरूर आपसे सवाल करेंगे, तो आपने नहीं कहना मैं खुद उनको कहता हूँ मैं करीब हूँ। करीब से इंसान को इतना हौसला मिलता है कि अल्लाह मेरे से करीब है, हुआ माकुम अईना माकुम, तुम वो तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ कहीं पे भी हो, ये इंसान को कितनी तसल्ली देता है। नहीं अल्लाह मेरे से दूर नहीं है, लेकिन दूर हो तो फिर इंसान सोचता है पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं, जो करीब हो अल्लाह तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, यानी इतने करीब है तुमसे, क्या इसे तसल्ली नहीं हो जानी चाहिए? इंसान को खुशी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चीज हूँ, रब्बे कायनात और ये वो इतना बड़ा और ये एक जर्रा है। शैतान कहता है नहीं दूर है, वो कहाँ सुनेगा तुम्हारी, तुम तो इतने गुनाहगार हो, आए मुझसे इतने गुनाह हो गए, मेरी तो जिंदगी इसमें गुजरी, मेरी कहाँ सुनी जाएगी। यही है मायूसी, यही है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, और इसी से शैतान खुश होता है। इंसान जब ये सोचता है ना अल्लाह मुझसे करीब है, तो फिर वो सरगोशी करे, ऊंची आवाज में बोले, किसी तरह बोले, उसको पता है मेरा अल्लाह मुझे मुझे सुन रहा है, और अल्लाह सुनता है, क्योंकि आगे ही आया उजीबु दावत दाई दान, मैं जवाब देता हूं पुकार का, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात का जवाब देता हूँ, इजा दानी, जब मुझे पुकारता है। ऐसा नहीं है कि अभी रात का टाइम है तो अभी नहीं अल्लाह को पुकार सकते, अभी जवाल का वक्त है अभी नहीं पुकार सकते, अल्लाह ताला के पुकारने के लिए कोई टाइम नहीं है कि जिसमें हो। आप कभी बीमार होते हैं, रात आधी होती है, आप किसको जगाएं, किसको तकलीफ दें, किसको कहें, होता है ना, किसी के आराम का वक्त है, और जितना कोई बड़ा होता है उतना तो उससे मिलना और भी मुश्किल होता है। जितनी किसी का ओहदा बड़ा है, जितना किसी का मकाम बड़ा है, उतना ही ज्यादा आपको देख के चलना पड़ता है कि भाई, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते, जब भी मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूँ, सिर्फ सुनता नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला बंदे की बात का जवाब देता है, इसीलिए आप सरसर ने बताया तुम अपनी हर हाजत का सवाल अल्लाह से करो। वैसे तो कुछ औकात ऐसे हैं जिसके अंदर दुआएं ज्यादा कबूल होती है, मसलन जुमे की घड़ियां हैं, मसलन इस तरह कुछ है, मसलन इफ्तार का वक्त है रोजेदार के लिए, लेकिन ये नहीं कहा गया सिर्फ उस वक्त सुनता है बाकी वक्त नहीं, नहीं जब भी तुम पुकारोगे, जब भी तुम हाथ उठाओगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ उठाता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं इसको खाली हाथ कैसे लौटाऊं। इसका मतलब जब भी इंसान मांगता है अल्लाह कुछ दे के भेजता है, खाली नहीं भेजता। हाँ ये अलग बात है कि हम जब कहते ना हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, दुआ नहीं कबूल हो रही, तो दुआ कबूल होने का मतलब हम क्या समझते हैं? हमने ये समझा है कि जो चीज बस मुझे चाहिए वो ही मिलेगी तो दुआ कबूल होगी, वरना नहीं हो रही। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा भी अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें ना गुनाह हो ना कतह रहनी हो, यानी रिश्तों को तोड़ने की बात ना हो, तो अल्लाह ताला तीन में से एक जरूर चीज उसको देता है। नंबर वन, या तो उसकी दुआ को एज इट इज पूरी कर देता है, जैसे उसने मांगी वैसे ही हो गया, या अल्लाह उसको जखीरा करके छोड़ देता है, आखरत में अता करेगा, और आखिरत में क्या होगा, इंसान जब देखेगा ना कि ये इतना बड़ा बड़ा मुझे अजर मिल रहा है, इतने बड़े मेरे दर्जात हो रहे हैं, तो वो पूछेगा कि या अल्लाह किस बात का, कौन सी मैंने ऐसी नेकी की है। उस वक्त उसको कहा जाएगा ये वो दुआएं हैं, उनका इनाम है जो तुम्हारी दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। तो वो कहेगा या अल्लाह काश ऐसा होता कि मेरी दुनिया में तो कोई भी ना दुआ कबूल करता, सारे यहाँ पे मुझे इतने जबरदस्त इनाम मिलने थे इसके, और वहां पे बड़े बड़े इनाम आते का। नंबर थ्री, यहाँ फिर कोई बला थी, कोई मुसीबत थी, अल्लाह ताला वो टाल देता। अल्लाह रहम करे, कोई एक्सीडेंट होने लगता है हम कहते हैं पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई, तो वो कोई नेकी हो नहीं, हो सकता है कि कोई दुआ जो आपकी वैसे कबूल ना हुई हो उसकी, उसको अल्लाह ने रखा हो कि आपसे ये मुसीबत डाल दे। तो सुभान अल्लाह कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो लोगों ने जब ये हदीस सुनी ना तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह फिर तो हम बहुत दुआएं मांगा करेंगे, बहुत दुआएं मांगा करेंगे, ये तो मुफ्त में ही मिल रहा भाई। आपने फरमाया कि हाँ फिर अल्लाह के यहाँ तो कोई कमी नहीं। दो तरह से एक बात कही गई है, दुआएं दो तरह से मांगे। ये मसलन आपको एक मिसाल देते, अल्लाह आफियत अता फरमा, अल्लाह हर तरह के हादसात से महफूज है। अब देखिए आफियत यही मतलब है, हर तरह के हादसात से महफूज, लेकिन आपने वो भी कहा वो भी कहा, यानी अल्लाह से बात करते रहे, अपना कनेक्शन जोड़े रहे रखे, अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना, अल्लाह इनको हर बुराई से महफूज रख। तो आपने दोनों तरह नेगेटिव को भी दूर किया और पॉजिटिव की भी बात की। तो अपनी दुआएं मांगे, जितना वक्त आपका दुआओं में गुजरता है वो सब इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ जो है ना मुखल इबादत है, महज है इबादत का, सिर्फ इबादत नहीं इबादत का निचोड़ है। हम सोचते हैं दुआ फालतू चीज है, लेकिन मांगे अल्लाह के दर के हमेशा फकीर रहें, और यही कहें कि अल्लाह मुझे अपने दर का फकीर ही रखना। तो कौन सी चीज है जो कि इंसान की दुआ की कबूलियत में हायल हो जाती है, दुआ नहीं कबूल होती। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक कोई आदमी दुआ में जल्दी ना करे उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल जल्दी करना क्या है, आपने फरमाया कि इंसान कहता है कि मैं तो मांगता रहा मेरी दुआ ही नहीं कबूल हुई, यानी ये कह के उसने मांगना ही छोड़ दिया, तो ये जल्दबाजी है। इसी तरह हराम लुकमा जो है ना वो भी दुआओं के रास्ते में हायल हो जाता है। इसी तरह ना उम्मीदी के साथ दुआ करना, ना उम्मीदी कि पता नहीं कबूल भी होनी है कि नहीं, यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह सुन रहा है। जब कुरान कह रहा है उजीब दावत ताइरा दान, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है जो सच्चों का सच्चा है, आपकी बात झूठ हो सकती है अल्लाह की बात झूठी नहीं है। गाफिल इंसान की दुआ नहीं कबूल होती, यानी आपका दुआ इधर मांग रहे हैं और ध्यान कहीं और है, दिमाग में कुछ और चीजें घूम रही हैं। अपनी तलब दिखाएं अल्लाह को कि अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, या किताबें हैं तो उनमें से पढ़ना, जिनका ना कुछ समझ आ रही है कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे दुआ कबूल होगी। वो आपके आंसू देख लेता है, इसको बख्शिश चाहिए, इसको मेरी रजा चाहिए, इसको मेरी मोहब्बत चाहिए, वो ये देखता है। कोई और ऐसा नहीं है जिसको आपके दिल की आवाज सुनाई दे, फिर भी ना उससे मांगे, फिर भी उसके आगे ना रखें अपनी हाजते और कहें कि कोई और है जिसके पास जाओ, उस दरगाह पे जाके मांगो के तो वहां पे मिलेगा। जबकि रब कह रहा है इजा दानी, जब भी मुझे पुकारे। क्यों कहते हो कि इन इन जगहों पे धागा बांधेंगे, इस जगह पे मन्नत मांगेंगे, इस जगह पे देख चढ़ाएंगे, इस जगह पे नजराना देंगे, तब जाके हमारी सुनी जाएगी। हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, उनके आगे क्यों रखते हो? और ये जुल्म हम करते हैं, कुछ अरसा अल्लाह से मांगी फिर उसके बाद में यहाँ पे तो नहीं बात बन रही। वो कराएगा आपका काम जो अल्लाह ने नहीं किया तो वो दूसरा करा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे गालिबन, और उनको नसीहत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ मेरे बेटे कभी किसी से कुछ ना मांगना सिवाय अल्लाह के, इसलिए कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके नुकसान नहीं दे सकती, और अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे पूरी दुनिया मिलके नफा नहीं दे सकती, तो फिर किसी और के पास क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्या वो नफा दे देगा अगर अल्लाह नहीं चाहेगा? क्या वो काम कराएगा जो अल्लाह नहीं चाहता? अल्लाह मुझे जवाब देता है इस आयत के ऊपर ईमान लेकर आए, कुरान की आयत है ना, इसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है ना। जब जब कोई और दरगाह पे जाएगा वो इस आयत का इनकार करता है। जब अल्लाह खुद कहता है मैं सुन रहा हूँ तो तुम क्यों जाके उसको सुनाते हो? क्या अल्लाह को गैरत ना आती होगी? कुछ सोचें, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। फल यस्तजीबू ली, तुम भी तो उसकी बात मानो। वल युमिनू भी, तुम भी तो चाहिए कि वो भी तो ईमान लाए मेरे ऊपर। ईमान किस बात का? कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला जवाब देता है, जो मैं हुक्म देता हूँ उनको, वो भी तो उनको कबूल करके उनके ऊपर अमल करें। आपने दुआ की है अल्लाह ताला के सामने, आजजी, अल्लाह की बात मानना, फिर उसके बाद हाथ उठाता है इंसान तो फिर अल्लाह भी सुनता है, तो तुम भी तो मानो बात को। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह रास्त पा जाए। रुश्द जो है ना वो हिदायत से भी आगे का दर्जा है। रुश्द के अंदर क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा देना, दुआ मांगते रहो ताकि तुम रुश्द पा जाओ, यानी यही सीधा रास्ता है कि तुम अल्लाह से मांगो तो तुम रुश्द पालोगे, हिदायत पालोगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे।